टीम फोर एंटरटेनमेंट अते ट्रांस 99 लॉजिस्टिक्स पेश कर देने पंजाबी विरसा 2024 टोरंटो शो सैटरडे 7 सितंबर नू द थिएटर एट ग्रेट कनेडियन कैसीनो रिजोर्ट टोरंटो वुडवाइन मॉल अते वुडवाइन रेस ट्रैक ते बिल्कुल नाल मनमोहन वारिस कमल हीर अते संतार टिकटां लई ticketmaster.ca ते जाओ वधेरे जानकारी लई कॉल करो टीम फोर एंटरटेनमेंट 905-793-1234।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है,
मेरी सेविंग $350,
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660 quicktruckloop.com।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां मारने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
ए संदेश जरा ध्यान नाल सुनो। गवर्नमेंट ग्रांट बच्चियां अते परिवारां वास्ते उपलब्ध है। अगर तुहाडी इनकम $60,000 तो घट है ते तुहाडे बच्चे 12 साल तो घट उम्र दे हन तां तुहानू गवर्नमेंट तो $12,000 तो लैके $60,000 तक दी ग्रांट मिल सकदी है। ए पैसा तुहाडे अकाउंट विच 3 हफ्तियां दे अंदर अंदर आ सकदा है। ए गवर्नमेंट ग्रांट सर्विस ओंटारियो, अल्बर्टा अते BC विच उपलब्ध है। होर जानकारी लई शावेज दे नाल 647-769-0241
वेलकम बैक तमाम सामाइन को जो हमें 770 एम डायल पर सुन रहे हैं। प्रोग्राम साज़ो आवाज, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ शामिल हुई हैं, जुड़ी नहीं है, आज शामिल हुई हैं शाजिया मलिक साहिबा गर्मा गर्म खबरें लेके। और आपको पता है मुकाबला सख्त है आज 7 बजे, तो लियाकत मलिक साहब अपना भूली बिसरी यादें प्रोग्राम लेकर आ जाएंगे और तकरीबन फिर एंड तक ही चलेगा। तो अभी हम शाजिया जी को जो है वो प्रोग्राम में जल्दी शामिल कर लेते हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है मुझे। अभी 4 जरासीम मेरी तरफ आए उड़ते हुए, हो सकता है मुझे भी बीमार कर दें, लेकिन इससे पहले कि मुझे बीमार करें मैं इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS
थैंक यू।
अच्छा मड़ा तुम कैसे, ठीक है?
अल्हम्दुलिल्लाह आप बताइए कैसी सब जिंदगी
है? ठीक है बस, अभी क्या तो आज तुम्हारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं तो मड़ा बस कुछ मर मर के चल रहे हैं।
देखें आपको पता नहीं है
जो मर रहा है उसको मर ही जाना चाहिए।
जिसने मरना है वो टाइम पर ही जाएगा, ये मेरा ईमान है।
अच्छा अच्छा, नहीं आप समझे नहीं है जो मेरा पन है जो मैंने उसमें कहा।
नहीं आपके पन मैं नहीं समझता, समझना भी नहीं चाहता।
अच्छा तुम समझना नहीं चाहते ये और बात है।
हाँ मैं समझना नहीं चाहता क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा ना कि हम हैं गर्मी के कीड़े।
वो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कीड़ा।
हाँ जैसे एक ऑर्गेनाइज है कीड़ा कीड़ा तो वो कीड़ा कीड़ा बन गया क्योंकि घड़ी होता नहीं इंग्लिश में तो कीड़ा हो गया
कीड़ा हो गया
तो हम भी जो है वो गर्मियों के कीड़े और मुझे आज वो हो रहा था कि या अल्लाह अब अंधेरा छाता जा रहा है ये तारीखी हमारी जो है वो रोशनी को खाती जा रही है इसी तरीके से हमारे टाइम को भी खाती जा रही है
एग्जैक्टली
और मुझे लगता है कि ये हमारा
दो ही दिन अब रह गया आज का और कल का
उसके बाद मंडे जब ये सूरज निकलेगा तो वो अपनी रोशनी का जो टाइम लिमिट है वो तकरीबन मुझे लगता है आधे घंटे का और
7:30 तक हो जाएंगे हम सितंबर सेकंड से
30 मिनट सोचे
नहीं 45 मिनट्स क्योंकि हम 8:15 तक होते हैं ना तो 45 मिनट्स
आधा घंटा पौना घंटा जो है वो हमारी जिंदगी में जो है शाज़िया मलिक का रोल कम हो जाएगा और कुछ फरिश्ते और जो मजदूर लगे होते हैं मुझे बचाने के चक्कर में थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे क्योंकि मेरी जो है इनसे जान शायद अभी कन्फर्म नहीं है आपको नहीं पता एक 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 आपने वो सबक पढ़ा था शायद दूसरी तीसरी जमात में था उर्दू में था नया कानून हाँ ये चैप्टर है मतलब अच्छा। एक वो था मजमून था
अच्छा।
नया कानून
अच्छा।
तो वो कानून नया आ जाता था हाँ। और वो चीजें बंदा सुबह उठता था भाई आज तो ये होगा फला होगा ये होगा और जब वो पहुंचता था तो वो चेंज हो जाता था कि भाई नया कानून आ गया तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद रहता
तो
है
तो ये हमें भी थोड़े कानून यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे आमिर साहब वो एक कानून ये था कि वो घर में ना आदमी जो है बेचारा बीमार रहने लगा तो उसकी बीवी डॉक्टर के पास गई तो उसको कहा कि देखें जी मेरा मियां जो है उसको बीमारी हो गई उन्होंने कहा जी क्या कहते हैं सारी रात बोलता रहता है कहता है तो मैडम अपने घर का सिस्टम चेंज करो ना थोड़ा उन्होंने कहा क्या कहते हैं उसको दिन में बोलने दो ना तो सर आप भी मुझे बोलने दो ताकि फटाफट खबरें खत्म करें क्योंकि आपने मुझे जो है ना 10 मिनट पहले कह देना इशारे ही शुरू कर देने ऐसे 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 ऐसे
नहीं, मैं इशारे खत्म करो नहीं करते।
इतने गंदे तुम्हारे इशारे होते हैं
बिल्कुल
मैंने ऑलरेडी मैनेजमेंट को कहा मैं गंदे
आप जो है ना बंदे मतलब सोचिए कि बंदे को विंटर टाइम में फारिग कराने
नहीं ये ऐसे ऐसे क्या होता है ये ऐसे ऐसे
ये मैंने ये वो ऐसे चलाने का मतलब है कि लपेटे
नहीं
ये है कि अपनी खबरें लपेटे
हाँ तो ये
छोड़ रही है लंबी लंबी उसको लपेटे
तो ये अब देखो ना अब ये गंदी बात है ना मैं खबरें छोड़ रही हूँ कोई और मैं उनको क्यों लपेटूं भाई इसलिए मैं कह रही हूँ अच्छा तुम्हारा जेन चूंकि इतना खराब हो चुका है ना तुम्हें मेरी सारी बातें खराब लगती हैं मेरा जो तुम्हारे गंदे इशारों से मतलब था वो यही था कि तुम सोचते हो कि मैं फेंकती रहती हूँ स्टोरियां बस ऐवे इधर उधर से उठा के और जो है ये बकवास बंद करो अब आप जो है इसका ये मतलब है जो तुमने
अल्लाह हू अकबर
देखिए दूसरे लफ्ज बोल दिए
ये जो आप जितने
लपेटे
जर्नलिज्म का इतना नेगेटिव इसको जो है ना वो कभी कभी आप प्ले कर जाती हैं
भैया
अपनी स्टोरी बना ली आपने खुद ही और इस बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को और बी पॉजिटिव बंदे को जिसने जो है
नहीं आपने खुद ही अपने मुंह से कहा कि मैं आपको इशारा देता हूँ कि स्टोरी लपेटो तो मतलब स्टोरी लपेटो का पंजाबी विच कहते हैं जी बकवास बंद करो
ये पता नहीं पंजाबी में क्या कहते हैं हमारे यहाँ तो शहर में ही हो रहा होता था कि जैसे हम फर्ज करें पतंग उड़ा रहे हैं तो जब वो कहते थे यार भाई मगरिब का वक्त होने वाला है ऐसा करो अब इसको लपेट लो ये वर्ड यूज होता था इसको लपेट लो इसका मतलब है कि यार टाइम
करो खत्म
का टाइम हो रहा है इसको खत्म करो जो पतंग उड़ी है अब इसको लपेटो यानी उतारो
ठीक है एक
तो अब इसमें आप जो है पंजाबी में ये कहते हैं पंजाबी में वो कहते हैं ये बोलते हैं
मैंने तो सिर्फ बकवास ही ऐड किया है ना बाकी तो बंद करें तो सही कहा है ना मैंने
बंद करें और बकवास करें बहुत
बंद करें नहीं आप कहते हो बंद करें तो मैंने सिर्फ ये इसमें ऐड किया बकवास बंद करें
बहुत आपका वर्ड
तो वही तो कह रही हूँ एक ही वर्ड
है वही है ना डॉट और सवालिया निशान ये आप लोग जितने जर्नलिस्ट हैं ना ये कह लेना ये भाई
खतरे में नाक है
जो आप सवालिया निशान लगा देते हैं हेडलाइन के आगे
बिल्कुल
और उसके आगे एक डॉट लगा देते हैं
ठीक है
ये मुझसे मेरे आगे नहीं चलेगा
चलो
जहाँ
स्टोरियां सुनाने लगे हैं उसमें ये डॉट और क्वेश्चन मार्क आएंगे ठीक है जनाब अच्छा जी दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय लैम्फाई आपको पता ही बड़ी जबरदस्त इनकी सर्विस है और मिनटों सेकंडों में अगर आपके पास पैसे हैं जैसे कि आमिर के पास है और आमिर हर महीने भेजता है पाकिस्तान तो अगर आपके पास भी पैसे हैं और आप भेजना चाहते हैं तो आप लैम्फाई यूज करें अगर आपके पास एंड्रॉयड या के एप्पल है तो उसके ऊपर आप ये ऐप डाउनलोड कर लें और बहुत ही जबरदस्त इनकी सर्विस है आपको $250 अगर आप भेजेंगे इसके ऊपर आपको $30 का कैशबैक मिलेगा इस ट्रांजैक्शन पे इसके साथ साथ जो है जीरो ट्रांसफर फी और भी बहुत सारी सर्विसेज इसकी हैं आप ये डाउनलोड करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा और जनाब आ गया वो शाकार जिसका था इंतजार यानी कि टेलस्कूडो जो स्टोर है उसका कल होने वाला है लाइव ऑन लोकेशन और हमारी टीम वहां पे होगी तो आप जरूर जाएं 3470 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 42 मिसेस सागा में और 3 बजे के बाद से हम लाइव लिंक्स लेना शुरू कर देंगे तो वहां पे हमारी टीम जो है वो आपके साथ डायरेक्टली बात करेगी और आपको बताएगी क्या क्या टैलस कूडो स्टोर के ऊपर क्या स्पेशल्स हैं। वैसे तो कुछ हमने आपको बताया ही था कि कूडो का अगर आप 50 GB का लेंगे $39 का आपको मिलेगा, टैलस का 100 GB का आप प्लान लेंगे तो $50 का मिलेगा, कूडो का इंटरनेट लेंगे 100 Mbps तो आपको $30 में मिलेगा। तो और भी बहुत सारी गुडीज हैं, जैसे कि कल आमिर ने उनको कहा कि भाई कुछ स्पेशल दो हमारे 770 वालों के लिए, तो वो आमिर से तो आपको पता है ना उनका बड़ा प्यार है, तो वो कह रहे हैं कि हम जी आपको बिल्कुल स्पेशल देंगे, ठीक है। एंड जनाब ऑन्टारियोज लार्जेस्ट लाल पाकिस्तानी बफे विलेज स्टेस, दो लोकेशन हैं इनके, आप दोनों पे जाके एंजॉय का मजा ले सकते हैं। एक है मिसिसागा में, अगर आप मिसिसागा के रेस्टोरेंट पे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 905-232-3663, और अगर आप ओकविल में तो आप कॉल कर सकते हैं उनको 905-226-2294 पे, ठीक है जी। अच्छा जनाब हम शुरू करने लगे हैं अपनी घर में, और घर में जो है ये आज फिर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और फिर आपने भाईजान बिल्कुल पूरी सुननी है, इससे पहले कि आप आके एतराज करोगे जी आपने पाकिस्तान की खबरें नहीं सुनाई या कोई और अच्छी खबरें नहीं सुनाई, तो आपने प्लीज पूरी सुननी है, ठीक है, पूरी सुने। अच्छा जनाब पीए पॉलीएव साहब जो हैं उन्होंने जगमीत सिंह साहब को आज कहा है कि भाई तुम अपना जो ये तुमने सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस डील जो बनाया हुआ है ट्रूडो के साथ ये तुम खत्म करो, ताकि इस फॉल में यानी कि अक्टूबर में हम इलेक्शन लेकर आ सकें। वो कहते हैं जी कि ये तुम्हारी हेल्प जो इसके साथ खड़ी हुई है 2022 से, उसकी वजह से लिबरल्स जो हैं वो उसमें हैं, पावर में हैं, और वो कहते हैं जी कि ये हम एक नॉन कॉन्फिडेंस का वोट लाना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए जब हाउस ऑफ कॉमन्स रिज्यूम करेगा अभी सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर में, ताकि जो ये कार्बन टैक्स पोल जिस गवर्नमेंट ने ट्रिगर किया है उसके लिए हम उसको आउट कर सकें और अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस ला सकें। उन्होंने कहा जी कि कैनेडियंस जो हैं वो बिल्कुल ये अफोर्ड नहीं कर सकते जितनी महंगाई हो गई है, तो आपकी ये जो कोलिशन है ये बहुत ही कॉस्टली दिन ब दिन बनती जा रही है, तो आप जो हैं इनको पावर में रखना चाहते हैं और कोई भी इनको पावर में नहीं रखना चाहता है, तो आप ड्रैग कर रहे हैं एक और साल और लोगों की मुश्किलें जो है उसको आप उसमें बढ़ावा कर रहे हैं। एक लेटर जो है इन्होंने ये जगमीत सिंह साहब को लिखा है और उसमें उन्होंने कहा जी कि आप सारे लोग इसीलिए जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप लोग जितने भी MPs हैं आपको पेंशन मिलेंगी है पयन, तो पेंशन के लिए तो पयान सारे लोग इस गरीब मुल्क में पेंशन के ऊपर ही तो बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं जी कि आप वैसे तो सिंह साहब जो हैं वो जो उनका भी वैसे इंटरेस्ट हो सकता है क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये एक बाय इलेक्शन जो हुआ था फरवरी 2019 में उसमें ये इलेक्ट हुए थे, तो सिंह साहब के पास अभी भी 6 महीने हैं, अगर 6 महीने से पहले गवर्नमेंट चली गई तो इनके भी पेंशन में कमी आ जाएगी, तो इसलिए जो है उन्होंने आज पीएफ पॉलीएफ साहब ने ये बड़े जो है बड़ा वेल्ड तरीके से ये सारों के ऊपर जो है ये अटैक्स किए हैं कि तुम लोग अपने पेंशन के लिए बैठे हुए हो और तुमने जो है ज्वाइन किया था ट्रूडो को कि लाइफ जो है लोगों की मोर अफोर्डेबल और अच्छी रहेंगी, लेकिन तुम्हारा कोलिशन जो है तुम्हें भी पता है कि ये सही काम नहीं कर रहा है और ये बड़ा डिजास्टर है क्योंकि तुमने खुद बहुत दफा जो है ये इस चीज को एडमिट किया है। ये आज पीएफ पॉलिया साहब ने लेटर में जगमीत सिंह साहब को सारी बातें कही हैं। ऑन्टेरियो की जो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिल डनलॉप साहिबा, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि हम जो है गवर्नमेंट जो है एक एड्स ब्लिस यूज कर रही है जिसके के अंदर नए रूल्स लेकर आ रही है जिसमें कि अब सेल फोन्स जो है उनको कंप्लीटली बैन किया जाएगा केजी से लेकर ग्रेड 6 तक, और जो है बच्चे या तो अपना फोन साइलेंट रखेंगे या अपने टीचर को देंगे, ग्रेड 7 से 12 जो है वो अपना सेल फोन रख सकेंगे लेकिन वो प्रॉपर्टी के बाहर यानी कि स्कूल के बाहर यूज कर सकते हैं, वो स्कूल के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं जी कि हम नया कल्चर लेके आना चाह रहे हैं और ये नए रूल्स लेकर हम आना चाह रहे हैं, अगर टीचर किसी स्टूडेंट को कहेगा कि तुम फोन नहीं यूज करो और फिर भी अगर उसने किया तो फिर वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर उसकी शिकायत की जाएगी। फोर्ड की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अप्रैल में अनाउंस किया था कि हम ये स्वीपिंग चेंजेस लेकर आएंगे, सोशल मीडिया साइट्स जो हैं वो भी स्कूल के अंदर और इनके जो डिवाइसेस हैं जब स्कूल के प्रेमिसेस में होंगे तो ये सब कुछ शट डाउन रहेंगी, क्योंकि जिल डनलॉप साहब का कहना है साहिबा का कहना है कि ये सब चीजें जो हैं टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को खुद और उनके जो कॉलीग्स हैं जो पीयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इसके साथ साथ जो न्यू रूल्स आ रहे हैं उसके अंदर अगर कोई स्टूडेंट जो है वो वेपिंग करता हुआ सिगरेट अगर पीता हुआ पकड़ा गया तो उसको भी कहा जाएगा कि फौरन सरेंडर करें और उसके पेरेंट्स को बताया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो जो है $47.5 million जो है वो इंक्लूड कर रही है, इंक्लूडिंग $30 million टू स्कूल बोर्ड्स के जिसके के अंदर वेप डिटेक्टर सारे स्कूलों के अंदर वो कह रहे हैं आप लगाएं ताकि पता चले कौन कौन सा बच्चा वेपिंग कर रहा है, और इसके अलावा सिक्योरिटी अपग्रेड्स करने को कहा गया है। $15 million जो है वो बच्चों की सपोर्ट के लिए है, वो लोग जो कि सब्सटेंस यूज करते हैं या जिनका एडिक्टिव बिहेवियर होता है ताकि उस बिहेवियर से उसको बाहर लाया जा सके। तो ये बहुत स्वीपिंग चेंजेस जो हैं ये ऑन्टेरियो में जब बच्चे अब सितंबर में वापस स्कूल जाएंगे तो उनको देखने में मिलेंगी। लाइजन स्ट्रेटजीज जो हैं उनका एक पोल आया है और उसके मुताबिक डकफोर्ड साहब और टोरीज जो हैं अभी भी बहुत ह्यूज लीड से आगे हैं लिबरल से, और अगर इलेक्शन की कॉल दी जाए तो ये आगे रहेंगे। तो यानी कि मतलब ये है कि जो ये नई लिबरल पार्टी की जो आई है बॉनी क्रॉम्बी साहिबा, उन्होंने अभी भी इतनी ज्यादा लोगों के दिलों में अपने लिए मोहब्बत नहीं पैदा की है। शायद 1245 पीसी लीनिंग जो ऑन्टेरियो वोटर्स हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इसमें 40% लोगों ने कहा कि हम टोरीज को और फोर्ड को सपोर्ट करेंगे, 27% ने कहा लिबरल्स को, 21% ने कहा एनडीपी को, और बिटवीन 4-6% ने कहा ग्रीन्स को। 1/5 यानी कि 21% जो वोटर्स थे वो अनडिसाइडेड थे। इसके साथ साथ जो तमाम वोटर्स जिनसे पूछा गया इरिस्पेक्टिव की उनकी लीनिंग जो थी वो फोर्ड साहब और टोरीज के पास थी कि नहीं थी, तो उनमें से भी 28% ने फेवरेबल जो है वो बातें की फोर्ड साहब के लिए। बॉनी क्रॉम्बी के लिए 27% ने, एनडीपी की जो मैरिट स्टाइल्स हैं उनके लिए 24% ने, ग्रीन्स के जो माइकल श्नाइडर हैं उनके लिए 23% ने अपनी फेवरेबल ओपिनियन दी। टोरीज की जो सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा है साउथ वेस्ट ऑन्टेरियो के अंदर, ये 19 पॉइंट से लीड कर रहे हैं ऑन एनडीपी, और टोरंटो के अंदर लेकिन ये ट्रेल कर रहे हैं लिबरल से 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 पॉइंट्स पीछे हैं लिबरल से। ये 905 का एरिया जो है वहां पे टोरीज के पास 45% सपोर्ट है और लिबरल्स के पास 39%। ये सारे का सारा आंकड़ा ये कहता है कि अगर आज इलेक्शंस किए जाएं तो रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर ये किया गया था। डरहम पुलिस जो है उसने कहा जी कि पिछले 6 महीने से हम एक बहुत ही लंबी मल्टी जुडिशियल फायर आर्म्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जिसके के बाद जो है 32 लोग अरेस्ट हुए हैं, 184 चार्जेस जो है उन्होंने लगाए हैं और 16 वेपन्स इन लोगों से सीज किए हैं। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे विटवी की पुलिस के ऑफिसर्स जो खासतौर पर डरहम पुलिस के चीफ हैं पीटर मुरेरा, उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन थी जिसको के नाम दिया गया था प्रोजेक्ट बर्टन, उसको हमने कंडक्ट किया था अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ टोरंटो पुलिस एंड ओपीपी, और ये हमारी बड़ी कमिटमेंट है कि इलीगल आर्म्स जो कि हमारी स्ट्रीट्स में फिर रहे हैं और ये गलत हाथों में चले जाते हैं और हमारे जो नेबरहुड्स और जो लाइव्स ऑफ सिटीजन्स हैं वो बहुत ज्यादा एंडेंजर हो जाती है, उससे जो है बचाया जाए कम्युनिटी को। हमारे ऑफिसर्स जो हैं बहुत टायरलेसली काम कर रहे हैं कि ये जो गन वायलेंस है इसको खत्म किया जाए, और हमने बहुत सारा काम किया भी है और बहुत सारा काम सामने आया भी है, और इसमें बहुत सारे जो इलीगल आर्म्स हैं जो सर्कुलेशन में थे वो पकड़े भी गए हैं। हमारा काम है कि हम हर वक्त जो कम्युनिटी एनफोर्समेंट की ऑपरेशंस हैं वो कंटिन्यू करें और नेबरहुड्स अपनों के अंदर जो है वो सेफ्टी लेकर आ सकें। तो ये आज उन्होंने सारी बात की है। अच्छा जनाब, आमिर साहब आपको पता ही है कि टेलीग्राम के सीईओ पावल ड्यूरॉफ पकड़े गए हैं। इसके अंदर जनाब बड़ी ही कोई डीप कॉन्स्पिरेसी है। वो डीप कॉन्स्पिरेसी आपको इस न्यूज से पता चलेगी कि ये आदमी क्या, इसके पास सीक्रेट्स हैं, क्या चीज है। इसके ऊपर हम एक स्पेशल रिपोर्ट भी इंशाल्लाह करेंगे, अभी मैं पढ़ रही हूं उसके बारे में, कि दुनिया जो है इतनी ज्यादा भड़क गई है। यानी कि आप अगर सोशल मीडिया के ट्रेंड्स भी देखें तो उसके ऊपर पावल ड्यूरॉफ बस एक ही चीज आजकल जो है वो चल रही है। ये इतनी बड़ी न्यूज क्यों है? अच्छा जी, ये इतनी बड़ी न्यूज इसलिए भी है कि आज हम आपको उसका एक बिल्कुल छोटा सा एक हम आपको दिखाते हैं, रुख दिखाते हैं। टेलीग्राम के ये जो टेलीग्राम के ये जो सीईओ पावल ड्यूरॉफ पकड़े गए हैं, ये आपको पता ही है कि ये यूएई नेशनल भी है, फ्रेंच एंड यूएई नेशनल है ये। इनको जब पकड़ा है, हालांकि इनको 5.56 मिलियन डॉलर्स का बॉन्ड लेके इनको रिलीज कर दिया गया है जेल में से, लेकिन ये फ्रांस नहीं छोड़ सकते, और अगर इनके खिलाफ चार्जेस प्रूव हो गए तो बड़ी एक लंबी एक लेंथी लीगल बैटल भी चलेगी। लेकिन इसके होते हुए आज यूएई की गवर्नमेंट ने जो फ्रांस से 80 राफेल फाइटर एरोस्पेस जायंट डसॉल्ट से ये प्लेन्स लेने थे, और इसकी तुमको पता है आमिर वैल्यू क्या थी? दिस डील वॉज वर्थ 20 बिलियन US डॉलर्स जो यूएई ने देने थे फ्रांस को, उससे यूएई पीछे हट गया। उसने कहा जी हम ये कैंसिल कर रहे हैं अपना जो है इतना बड़ा, और ये बहुत बड़ा धचका है क्योंकि आपको पता ही है कि फ्रांस की जो इकोनॉमी है वो भी जरा डामाडोल ही है। ये वैसे तो ड्यूरोव साहब जो हैं ये रशियन बॉर्न हैं, लेकिन इनके पास जैसे मैंने आपको बताया कि ये ड्यूअल नेशनैलिटी है, और यूएई जो था कॉन्स्टेंटली इसके लिए काउंसलर एक्सेस मांग रहा था लेकिन उसको डिनाई किया गया था। लेकिन ड्यूरोव जो था वो ये भी कह रहा था कि ये सारे एलिगेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और उसकी वजह ये है कि मैंने ये जो बहुत बड़ी वेस्टर्न गवर्नमेंट थी जो कि बैकडोर एक्सेस चाहती थी टेलीग्राम का, मैंने उनको जो है एब्सोल्युटली नॉट बोला था, तो उसकी वजह से ये मेरे साथ कर रहे हैं। अच्छा, आज जो यूएई ने ये इतनी बड़ी अपनी डील कैंसिल की है फ्रांस के साथ, उसमें और जो डिटेल सामने आई है उसका ये भी है कि जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं उनका जो बेटा है जायद अल नाहयान, उसके साथ इसकी बेइंतहा दोस्ती है, और जो है इसीलिए यूएई की गवर्नमेंट लग रहा है कि कुछ ऐसी तो बात है जो वो इसको बहुत ज्यादा जो है वो सेव करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर आज लोगों की बड़ी आंखें उठी हैं, और जो इसको फ्रांस में पकड़ा गया था उसमें जो लॉ मेकर थे उन्होंने कहा था कि ये टेलीग्राम जो है ये इट फेल टू चेक इलिसिट एक्टिविटीज लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पॉर्न डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए अपने प्लेटफॉर्म से इसने ये हटाए नहीं मैसेजेस, तो इसलिए हमने इसको पकड़ा है। जाहिर है कि ड्यूरोव ने इसको सारा किया है, डिनाई किया है, तो ये चीजें बड़ी ही डीप हैं, और ये इसके अंदर और जरा थोड़ी सी जब चीजें आएंगी उसमें कुछ ऐसी भी चीजें आ रही हैं कि ये बहुत सारा जो मटेरियल इसके पास था उसको शायद हैक करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं अलेजली, और वो शायद सामने आएगा तो बहुत ज्यादा लोगों कुछ लोग तकलीफ में आ सकते हैं। तो वो ये बिल्कुल एडवर्ड स्नोडन और वो जूलियन असान जैसा सिनेरियो ये जो है बनता हुआ फिर से नजर आ रहा है। बहरहाल ये आज की बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डील थी यूएई की फ्रांस के साथ जो उन्होंने किया। अच्छा, इनके ये जो फ्रांस के जो मैक्रों साहब हैं उन्होंने बड़ा कहा कि नहीं नहीं हमारी दोस्ती यूएई के साथ रहेगी, हम तो उनके साथ प्यार मोहब्बत से चलना चाहते हैं। वो यूएई ने कहा जी हल्ली वल्ली, वी डोंट वॉन्ट अ डील विद यू। तो बस ये जो है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट का मैसेज कुछ ज्यादा अच्छी तरह नहीं गया। ट्रंप साहब जी हैं, आपको पता ही है अब ट्रंप साहब इज बैक इन पॉलिटिक्स, अब तो फिर जाहिर है ट्रंप साहब की तो मजे मजे की रोज बातें आपको सुनने को मिलेंगी। अब जो है ट्रंप साहब ने बहुत ही कुछ खराब किस्म के कमेंट्स जो हैं वो अब जो है अलेजली उनके साथ अपने आप को जोड़ा। ये आपको पता ही है कि बहुत अरसे से ये हिलरी क्लिंटन के बारे में ये रिमार्क्स आते थे, सैन फ्रांसिस्को के जो फॉर्मर मेयर थे विली ब्राउन वो जो थे वो कुछ उन्होंने हैरिस के बारे में बातें की थी और कुछ लोगों ने हिलरी क्लिंटन के बारे में बातें की थी। ये जो थे विली ब्राउन जो थे ये कहते थे कि ये इसने सेक्सुअल फेवर्स दिए हैं अलेजली कमला हैरिस ने टू यू नो गेट पॉलिटिकल वो जो है वो लिए थे इसने, वो कहते हैं जी कि ये इनसे इन्होंने हेल्प ली थी, कुछ लोग कहते हैं कि विली ब्राउन से इन्होंने हेल्प ली थी पॉलिटिक्स में ऊपर जाने के लिए। और इसी तरह जो बिल क्लिंटन साहब के जो आगे थे मोनिका लेविंस्की के साथ 1990s में लव अफेयर, उसकी वजह से जो क्लिंटन फैमिली को बड़ा बुरा जो सामना देखना पड़ा था उसके ऊपर अब जो कि कैंपेन ट्रेल के ऊपर ये लोग हैं, तो कुछ लोगों ने इनका जो ट्रूथ सोशल वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसमें उन्होंने कहा जी कि लो जी देखो इनको ये तो जी अपने सेक्सुअल फेवर्स लेके और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप साहब ने जी क्या किया है कि उसको जो है रीट्वीट कर दिया, यानी रीट्वीट हम नहीं कह सकते उसको फिर से यानी शेयर कर लिया, क्योंकि ये तो ट्विटर के ऊपर नहीं है ना, ये तो अपने उसके ऊपर है ट्रूथ सोशल पे, तो इसको उन्होंने यानी कि शेयर कर दिया अपने उसके ऊपर और उन्होंने बड़ा इनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। अब जब इन्होंने ऐसा किया है तो लोग जो हैं वो बड़ा भड़क गए हैं, उन्होंने कहा जी कि आप इतनी ये खासतौर पर हिलरी क्लिंटन काबिल औरत है उसके बारे में आपको क्या जरूरत थी कि एक फजूल आदमी ने एक फजूल सी बात की थी तो आपने उसको जो है फिर से शेयर कर लिया। ट्रंप के जो सीनियर एडवाइजर हैं कैंपेन के जेसन मिलर उनसे सीएनएन ने पूछा कि भाई आप ये बातें डिस्कस करते हैं ट्रंप साहब के साथ, आप उनको बताते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने तो ये देखा है और मैंने मुझे नहीं पता कि ट्रंप साहब ने ये चीजें देखी हैं, मैं ट्रंप साहब को बताऊंगा और फिर मैं आपसे बात करूंगा। आपको पता ही है कि जिस वक्त से ये कैंपेन शुरू हुई है ट्रंप साहब कॉन्स्टेंटली कमला हैरिस को क्रेजी कहते हैं, नट्स कहते हैं, डम कहते हैं और कहते हैं जी कि ये अपनी ब्लैक हेरिटेज छुपाने की कोशिश करती है, तो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये बातें औरतों के लिए ठीक नहीं है, खासतौर पे एक ऐसा आदमी जो कि मुल्क का प्रेसिडेंट बनने वाला है, और हिलरी क्लिंटन के बारे में तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, और कुछ ने कहा जी कि ये असल में बिलीव नहीं करते हैं कि कोई औरत भी इतनी क्वालिफाइड हो सकती है कि वो इस लेवल पे आ सकती है। तो ये काफी आज जो है ये भी आज सोशल मीडिया इसकी वजह से भी काफी भड़का हुआ था। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा जो है उसने जनाब अब नए रूल्स वो लेकर आए हैं और वो कह रहे हैं कि कोई भी वो लोग जो कि सफर कर रहे होंगे कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन से उनको बिल्कुल परमिशन नहीं दिया जाएगा हज का। मिनिस्ट्री के जो ये सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा जो के जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद उमर भट्ट साहब, उन्होंने कहा जी कि चूंकि सऊदी के अंदर वेदर बड़ा एक्सट्रीम है इस हज सीजन में आएगा जो अभी और जो या आता है जब हज सीजन के अंदर जो सीजन होता है वो बड़ा एक्सट्रीम होता है और कुछ लोगों को जिनको के जैसे सीवियर बीमारियां होती हैं तो उनकी वेलबींग और सेफ्टी के लिए हम उनको कह रहे हैं कि उनको हज के लिए नहीं आना चाहिए। जो नोटिफिकेशन आई है मिनिस्ट्री की ये कहती है कि जो लोगों को किडनी हार्ट लंग लिवर कैंसर डायमेंशिया टीवी वूपिंग कॉफ वगैरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम नहीं एंटर होने देंगे किंगडम में। इसके अलावा जो बच्चे हैं अंडर 12 और प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको भी नहीं आने दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने अब मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी कोई हज के लिए आएगा वो ये वैक्सीनेशंस करवा के आएगा, एक तो मेनिनजाइटिस की, एक कोविड-19 की, सीजनल फ्लू की और पोलियो की। तो वो आज मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन ने कहा है कि सिर्फ वो लोग जिनकी हेल्थ और फिजिकल कंडीशन ठीक होगी जो कि ये पिलग्रिमेज के जो रिगर्स हैं इनको बर्दाश्त कर सकते हैं सिर्फ हम उनको अलाउ करेंगे, बाकी जो लोग क्रॉनिकली बीमार हैं उनको हम आने नहीं देंगे सऊदी में अब हज के लिए। यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस, उन्होंने आज एक दफा फिर से इसराइल को कहा है कि भाई तुम्हारा ये जो ऑपरेशन है वेस्ट बैंक का इसको इमीडिएटली रोको वरना ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव जो है वो हो जाएगा। लेकिन नतन्याहू साहब आपको पता ही है कहां कहते हैं, वो भी कहते हैं खली वली। उन्होंने कहा जी कि ये जो चार एरियाज हैं वेस्ट बैंक के जिसमें कि आप बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं और उधर जुल्म देखें जरा, लोगों के बच्चे इन्होंने मार दिए हैं और हजारों की तादाद में और पूरी मतलब एक नस्ल उनकी खत्म कर दी और अभी भी इनको चैन नहीं आ रहा और अभी भी इनके पीछे जो है लोग खड़े हुए हैं। बहरहाल जी उन्होंने अब जो है इसराइल को कहा है कि अपना ऑपरेशन वेस्ट बैंक में रोको क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो गई है। यूएस ने भी इनको कहा है कि भाई आप अपने जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं वेस्ट बैंक में उसमें सिविलियन लाइफ जो है उनका आप ख्याल रखें। ईयू के जो फॉरन पॉलिसी चीफ हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने भी बहुत ज्यादा आज इनको वार्न किया। उन्होंने कहा जी कि बेतहाशा यहां पे लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं और ये जो वॉर है ये एक्सटेंड कर जाएगी तो इसको रोकें। गुतरस साहब ने एक्स के ऊपर कहा है जी कि ये बड़ा डीपली कंसर्निंग है ये जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं और हम जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कंडेम करते हैं लॉस ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग किड्स और मैं इमीडिएटली कहता हूं कि ये सारे अपने ऑपरेशंस जो हैं रोकें। अब जो इसराइल है वो तो किसी तरह रोकने को तैयार नहीं है, वो तो आगे 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 जाता जा रहा है और अभी जो उसने बहुत ही डेडली अभी भी अटैक्स किए हैं उसके अंदर भी बेशुमार पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं। इसके अंदर आज जो जिसका के खतरे का बहुत इजहार ये यूएन के चीफ अंतोनियो गुतरस साहब ने किया है उसका जो जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया उसके बाद ये दूसरी अनाउंसमेंट आई है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। टॉप हमास ऑफिशियल खालिद मशाल जो हैं उन्होंने कहा है जी कि जितने पैलेस्टीनियंस और जो पैलेस्टीनियंस को लोग सपोर्ट करते हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि इसराइल की ये जो डेडली वॉर मशीन है ये नहीं रुक रही है तो तुम लोग सुइसाइड बॉम्बिंग्स अब फिर से शुरू कर दो। तो ये तो आपको पता ही है कि इसमें तो अब बंदे को अपनी जान की परवाही नहीं होती है जो सुइसाइड बॉम्बर होता है। और उन्होंने कहा जी कि ये ज़ायनिस्ट एंटिटी जो है अगर ये खुले में आके हमारे साथ फाइट कर रही है और हमको रेजिस्टेंस दिखा रही है तो हम भी अब खुले में आके इनसे लड़ेंगे। तो बड़ा रिजॉल्व है और बड़ा हौसला है भाई, मैं तो हैरान हो गई हूं कि किस हौसले पे ये पैलेस्टीनियंस जो हैं अभी भी खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं बहरहाल जी अपनी मदरलैंड को बचाने के लिए जो है। तो ये जनाब काफी जो है ये चीजें जो हैं जाहिर है कि खतरे की तरफ जा रही हैं और बस वो एंथनी ब्लिंकन साहब जाते हैं फेरा टोरा मारते हैं मिडिल ईस्ट का, वो अरब्स जो है उनकी हॉस्पिटैलिटी लेते हैं और फिर अपने मुल्क में चले जाते हैं तो पता नहीं क्या हो रहा है यहां पे। यही है कल हमने आपको बताया था जी कि बहुत ज्यादा तूफान और बारिशें और आए हुए हैं और बांग्लादेश में भी और जो है वो जापान में भी आने वाला है। तो जापान में आज जनाब ये जो टाइफून शैनशैंग है ये अब आ गया है और इसने मिलियंस ऑफ लोगों को जो है वो अफेक्ट किया है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें तो कहा जा रहा है कि 4 से 5 लोगों की डेथ्स हुई हैं और 45 लोग जो हैं बड़े गंभीर अंदाज में इंजर हुए हैं। ये जो टाइफून शैनशेंग है, ये आया है साउथ वेस्ट की तरफ और बहुत ज्यादा टोरेंशियल रेन्स और स्ट्रांग विंड्स चली हैं जिसकी वजह से पावर चली गई थी। इस वक्त जापान में 2 लाख जो हाउस होल्ड हैं उनके पास पावर नहीं है। ट्रैफिक स्नॉल्स देखे गए, जाहिर है कि बहुत ज्यादा जो थी वो बारिश की वजह से ज्यादा गाड़ियां ही तेज चल रही थी तो जाहिर है ट्रैफिक में रश ही होना था। फैक्ट्रीज मेजर बंद कर दी गई हैं। विंड्स ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर जो हैं वो इतनी स्ट्रांग विंड्स थी कि ये ट्रक्स जो हैं उनको भी गिराने की सलाहियत रखती थी और कुछ शायद इस तरह के हादसे हुए भी उन्जन सिटी के अंदर, नागासाकी के प्रीफेक्चर के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे जो 7 प्रीफेक्चर्स हैं उनके अंदर जो है बहुत ही तबाही आई और बिजली नहीं है और पानी खड़ा हुआ है और जो पावर लाइन्स हैं वो जो टूट के गिरी हुई हैं। इतना ये शदीद तूफान था कि लोगों के घरों की वॉल्स तक जो है गिर गई हैं। अब ये जो खतरा है ये पाकिस्तान की तरफ भी आ रहा है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इसका आज अलर्ट कराची में एटलीस्ट जो है वो दे दिया गया है क्योंकि ये बुरे तरीके से सिंध को हिट कर सकता है तो ये जनाब वहां पे भी तबाही जो है ला सकता है, तो अल्लाह बस रहम करे। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर फियाज कुरैशी। और डॉक्टर फियाज आपको पता ही है हर तरह के डेंटिस्ट्री के सर्विसेज देते हैं, इनके 3 क्लिनिक्स हैं, 2 मिसिसागा में और 1 स्कार्बरो में। अगर आपको इनके सर्विसेज लेने हैं तो आप इनके पास मिसिसागा के क्लिनिक में 9052325678 कॉल करके जा सकते हैं और स्कार्बरो में 4167579999 पे जाएंगे। और जनाब पायल ज्वेलर्स, इनके पास जबरदस्त किस्म की 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी है और दुबई और सिंगापुर से और इंडिया पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त ये ज्वेलरी लेकर आए हुए हैं। आपका कोई भी अगर फैमिली का ओकेजन है, निकाह है, शादी है, अकीका है, जो भी है आपके, तो आपने अगर कोई गोल्ड का गिफ्ट देना है तो आप इनसे ले सकते हैं। ब्रैम्पटन के अंदर है, इनका नंबर है 9057907879। ठीक है जी, ओके जनाब। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं आज बलूचिस्तान के अंदर थे, आपको पता ही है वहां पर बहुत ज्यादा टेररिज्म जो है अब शुरू हुआ है वहां पे। इन्होंने बात करते हुए कहा कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल उसका ये रिजॉल्व है कि वो रूट आउट करेगा ये सारा टेररिज्म विद कलेक्टिव एफर्ट्स। आज एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग जो थी नेशनल एक्शन प्लान की प्रोविंशियल जो एपेक्स कमेटी है एट चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट क्वेटा, वहां पर ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी ये लोगों का जो खून बहा है ये जाया नहीं जाएगा। इस मीटिंग को अटेंड किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, बलोच गवर्नर शेख जाफर खान मंदोखेल, बलोच चीफ मिनिस्टर मीर सरफराज बुक्टी, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, फेडरल मिनिस्टर्स एहसन इकबाल, अताउल्ला तारर, जाम कमाल, कॉर्प्स कमांडर्स और बहुत सारे आर्म्ड और सिविलियन ऑफिशियल्स जो थे यहां पे थे। उन्होंने कहा जी कि ये मैं इसलिए विजिट यहां पे कर रहा हूं कि ये जो रिसेंट ये जो चेन ऑफ टेररिस्ट के अटैक्स हो रहे हैं जिसके अंदर 50 लोगों की डेथ हुई है और 14 उसके अंदर से सिक्योरिटी के पर्सनल थे और बहुत सारे और भी जो डिफरेंट टेररिस्ट अटैक्स बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं जिसमें कि इनोसेंट लाइव्स गई हैं, हम उसको कंडेम करते हैं और हम वादा करते हैं कि हम इन सब टेररिस्टों को खत्म करेंगे। उन्होंने बिल्कुल आज जब जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा कि क्या आप ये बैंड ग्रुप्स में उनसे बात करेंगे, उन्होंने रूल आउट किया। उन्होंने कहा हम बिल्कुल किसी किस्म का उनके साथ डायलॉग नहीं करेंगे और जो ये जो सॉफ्ट अप्रोच है टू डील विद द एनिमी ये बिल्कुल खत्म की जाएगी और इनकी कमर जो है वो तोड़ी जाएगी। तो जनाब अब पता चलेगा कैसे अब ये काम करेंगे, पुलिस पता नहीं इनकी क्या करती है, हर चीज में मिलिट्री को इन्होंने बुलाया होता है, बहरहाल पता चलेगा। फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज जहरा बलोच, आज उन्होंने कहा है जी कि जो हो रही थी वीकली ब्रीफिंग, वीकली प्रेस ब्रीफिंग में उसमें उन्होंने प्रेस को बताया है कि जो एससीओ की मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में बिटवीन अक्टूबर 15 और 16 जिसके अंदर मिनिस्ट्रियल मीट होगी और सेवरल राउंड्स ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग्स ऑन इकोनॉमिक सोशो कल्चरल ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन की बात की जाएगी, उसके अंदर हमने मोदी जी जो हैं उनको भी इन्वाइट भेजा है और अब मोदी जी उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो तो अब उनके ऊपर है। बहरहाल हमने जो है सबको जो इनवाइट्स भेजे हैं उसमें मोदी जी को भी हमने भेजा है। तो उनसे जब पूछा गया कि कौन कौन से हेड्स ऑफ द स्टेट आ रहे हैं तो उन्होंने कहा जी अभी तक हमें कॉन्फर्मेशन नहीं है, जब आएंगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके साथ साथ उनसे पूछा गया कि क्या आपके डायरेक्ट बायोलेटरल ट्रेड हैं इंडिया के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमारे नहीं है, लेकिन हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो 50th सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो हो रही है इन कैमरून के योंडे जो सिटी के अंदर, वहां पे वो अगस्त 29 से 30th तक थे और पाकिस्तान ने वहां पे अपना पर्सपेक्टिव जो है बयान किया है गाजा पे, जम्मू एंड कश्मीर पे, टेररिज्म पे और दूसरे ग्लोबल इश्यूज के ऊपर। हम ये बिल्कुल जो जुल्म गाजा में हो रहा है हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, अनएक्सेप्टेबल है। इसी तरह उन्होंने कहा जी कि मई के महीने में लास्ट ईयर जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे बीवी जरदारी साहब, उन्होंने टू डे का जो एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी वो इंडिया में गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12 ईयर्स, तो उन्होंने अटेंड की थी। तो अब हम सोचते हैं कि शायद मोदी जी जो हैं वो शायद आएं, तो अब पता नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं। बहरहाल इससे पहले तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था कि शायद मोदी जी नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है, मुझे खुद लगता है कि जैसे मोदी जी को आना चाहिए वैसे, और ये जो इतनी लड़ाई झगड़े नफरतें हैं इनको खत्म करना चाहिए जो है। पाकिस्तान के जो लॉ फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं आजम नजीर तारर साहब, उनसे आज पूछा गया कि क्या आप जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनके केस में कुछ टिप्पणी दे सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, यानी कि मेरे उसमें लाइन ऑफ एक्शन के अंदर नहीं है कि मैं उनके केस के ऊपर कोई बात कर सकूं या मैं कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन दे सकूं कि उसके उनके केस को आगे लेके जाएं। हां अलबत्ता जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अगर चाहती है कि इस सिलसिले का जो फैज हमीद के साथ के जो इमरान खान के जो ताल्लुकात थे इस केस के अंदर, अगर इमरान खान को वो मिलिट्री कोर्ट्स में रेफर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, मेरा इस सिलसिले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। आज एक इनफॉर्मल टॉक कर रहे थे जर्नलिस्ट के साथ इन इस्लामाबाद, उन्होंने कहा जी कि इस सिलसिले में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हम नहीं ला रहे हैं क्योंकि एक ज्वाइंट सेशन हुआ था जिसके अंदर ये इस तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं आई थी और ना ही हम कोई इस तरह का न्यू रिकमेंडेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा जी हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कोई सरप्राइज लेशंस लेके आने के लिए। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा का आप एक्सटेंशन कर रहे हैं। अगेन उन्होंने कहा जी कि ये मेरा जो लाइन ऑफ एक्शन है या जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर, मेरी ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है कि हम इनको, मैं इनको एक्सटेंशन दूं, और इस तरह का वैसे मुझे लगता है कि कोई प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन भी नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता हूं, जो करेगी गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो फैसला लेगी। केपी के जो मिनिस्टर हैं शौकत यूसुफ जई, उन्होंने ये डिसमिस किए हैं प्लान्स के जिसमें ये पीटीआई के बारे में र्यूमर्स आ रहे थे कि वो डिस्टर्ब्ड हैं कि इमरान खान साहब को जो इनकार्सरेट किया गया यानी कि जेल में रखा हुआ है। एक टीवी शो के अंदर वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर कोई भी जो है सच्चाई नहीं है, पीटीआई का वोट बैंक जो है वो कहीं पे भी नहीं गया है, वो बिल्कुल उसी का उसी तरह है। इन्होंने बात करते हुए कहा, इन्होंने कहा जी कि ये जो बहुत सारी टग ऑफ वॉर्स चल रही है जिसके के र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि जी ये बहुत ज्यादा पार्टी के अंदर क्लैशेस आ गए हैं फॉर करप्शन एंड बैड गवर्नेंस स्पेशली इन केपी अंडर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। और ये भी सच्चाई नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पीटीआई का रैली नहीं लेकर आ सके हैं, तो ये गलत है जो इम्प्रेशन है कि पीटीआई इन एबल है कि वो पब्लिक रैली नहीं ला सकती है। और इस महीने के शुरू में आपको पता ही है कि पीटीआई के केपी के जो दो लीडर्स थे आतिफ खान और जुनेद अकबर, वो जाके पीटीआई के लीडर जो है इमरान खान साहब उनसे मिले थे जाके अडियाला जेल में, और दोनों ने ही कहा था कि हम सपोर्ट करते हैं फॉर्मर केपी मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड वर्क्स शकील अहमद, जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था कि चीफ मिनिस्टर गंडापुर की बैड गवर्नेंस है और बड़ी करप्शन है उसकी गवर्नमेंट में। तो उसके ऊपर फिर इमरान खान साहब ने कहा था कि कमेटी हम बिठाएंगे और वो सारी ये चीज जो है वो प्रोब करेगी। तो उसी सिलसिले में ये एक टीवी शो के ऊपर ये बात कर रही थी और उनसे पूछा जा रहा था कि भई आपकी तो पार्टी के अंदर कुछ टूट फूट नजर आ रही है, तो उन्होंने कहा कोई टूट फूट नहीं है और ना ही इमरान खान साहब के जेल में बैठने से हमारी पार्टी खराब हो रही है, ये सब कुछ गलत है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं जी, उन्होंने कहा जी कि हम नई इकोनॉमिक पॉलिसीज और मेजर्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं जिसमें कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट बनेगा और अट्रैक्ट करेंगे हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को। दिस न्यूज वॉज गिवन बाय रेडियो पाकिस्तान और वो एक चेयर कर रहे थे हाई लेवल का मीटिंग इन इस्लामाबाद विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट फर्म्स जिसके के अंदर थी पाक ब्रुनाई इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और सऊदी पाक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट कंपनी। उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल कमिटेड हैं कि हम ये इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है इसको इम्प्रूव करेंगे और کیونکہ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے ساروں کو کہ پاکستان جو ہے وہ $7 بلین کا بیل آؤٹ پیکج اس کو چاہیے آئی ایم ایف سے, جس کے لیے بڑی زور لگائی ہوئی اورنگزیب صاحب نے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ دو کمپنیز جو ہیں انہوں نے ڈیٹیلز میں بتایا کہ انہوں نے کون سے ڈیولپمنٹ انیشیٹوز پاکستان میں لیے ہیں. فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ان کا جو سعودی عربیہ کا ویژن 2030 ہے جو ایم بی ایس کا ہے اس کی بڑی تعریفیں کی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بڑا انٹرسٹ ہے کہ وہ بھی اس طرح کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اڈیپٹ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ایکٹیولی جو ہے آج کل انگیج کیے ہوئے فارن بینکس کے ساتھ, جس کے اندر ان کی ریسنٹلی میٹنگز بھی ہوئی تھی ود دبئی اسلامک بینک اینڈ دبئی مشرق بینک. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم انویسٹمنٹس ملک میں لے کر آنا چاہتے ہیں. سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے کہ ہم غریب لوگوں کو سندھ کے اندر چیپ الیکٹریسٹی جو ہے وہ دیں گے, اور جن لوگوں کو ہارڈ شپس جو لوگ فیس کر رہے ہیں ہائی پاور بلز کی وجہ سے ان کو جو ہے سہولت دی جائے گی. آج مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم 200,000 سولر پینلز جو ہیں وہ فری ڈسٹریبیوٹ کریں گے سندھ کے اندر, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم دوسرے صوبوں کی طرح نہیں ہے جو ایک ڈیسیجن پہلے سناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ان کا سیدھا سیدھا نشانہ جو تھا پنجاب کے اوپر تھا, تو پنجاب میں لوگ جو ہیں بھڑک گئے. پنجاب کی انفارمیشن منسٹر آزمہ بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو دو پروجیکٹس اناؤنس کیے تھے اس سلسلے میں وہ پروگرس بڑی اچھی طرح سے کر رہے ہیں, اور انہوں نے بڑا اعتراض کیا نہ صرف ان کے اوپر بلکہ بی بی زرداری صاحب نے جو تھوڑے دن پہلے ایک اسپیچ کی تھی جس میں کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ جو ہیں اس طرح کے جو پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ کے اور یہ لگایا جا رہا ہے اس کے اوپر جو پاور کے اوپر, اور جو ہے وہ سندھ کے اندر پاور کے بڑے کرائسز ہیں اس کے اوپر بھی آج انہوں نے بڑا اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی ان کو ذرا پوری طرح سے ذرا سمجھائیں بی بی زرداری صاحب کو, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ لیڈرز جو ہیں ان کو انکمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے تو پھر یہ جو ہے اٹ لیڈس ٹو امبیرسمنٹ. یہ جو ہمارے دو پاور کے جو پروجیکٹس ہیں یہ بالکل ہمارا کمپریہنسو پلان ہے, اور ہم جو ہے اس میں سولر پینلز بھی لگا رہے ہیں اور ہم پاور بل ریلیف بھی دے رہے ہیں جو کہ سولر پروگرام کے امپلیمنٹیشن سے پہلے کیا جائے گا, تاکہ ایک کمپریہنسو انرجی مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ صوبے کے اندر بنایا جا سکے. تو یہ جناب گرما گرمی تھوڑی سی آج ہوئی. اور جناب یہ ایک صاحب ہیں جن کا کہ نام ہے طیب بلوچ صاحب, جن کے بارے میں بڑے عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ جی یہ مسنگ ہیں April 2024 سے. آخر کار پتا چلا کہ یہ ایف سی کے اوپر جو اٹیکس سوئسائڈ اٹیکس کر رہے تھے اس کے اندر یہ طیب بلوچ صاحب جو ہیں یہ شامل تھے, جس میں کہ بہت سارے ایف سی کے جو ہیں وہ جوان بھی مارے گئے تھے. August 26 کو یہ جو ایکسپلوژنز ہوئے تھے یہ سیکیورٹی فورسز کا جو کیمپ ہے بیلا میں اس کے گیٹ کے پاس, کہ جب ایک گاڑی آگے کولائیڈ کی تھی اور اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی محل بلوچ 23 ایئرز کی لڑکی فرام سربندر گوادر سے, اور اس کی ریسپانسبلٹی فورن بلوچستان لبریشن آرمی بی ایل اے نے لی تھی. اس نے کہا تھا جی کہ ہم نے اس کی گاڑی جو ہے ماری ہے وہ گیٹ کے ساتھ. تو اب یہ سارے کا سارا جو ڈرامہ ہے یہ ہولے ہولے سامنے آتا جا رہا ہے کہ کون ایکچولی ان لوگوں کو مسنگ کر رہا ہے. بی ایل اے کے طیب بلوچ صاحب جو ہیں جن کو کہ الیاس لالا بھی کہا جاتا ہے, اب پتا چلا ہے جو ساری انفارمیشن اور انویسٹیگیشن کی گئی ہے کہ وہ ان سب جو اٹیکس تھے ان کے پیچھے تھا. بی ایل اے نے اس سے پہلے بڑی چلاکی سے ایک ایف آئی آر لکھوائی تھی طیب بلوچ کے مسنگ ہونے پہ اور ڈس اپیئر ہونے میں, اور اس کو کہا تھا کہ بڑے سسپیشس سرکمسٹانسز میں یہ غائب ہو گیا ہے, اور یہ انہوں نے نیریٹو اس لیے بلڈ کیا تھا تاکہ پولیٹیکل لیوریج جو ہے وہ لیا جا سکے. تو اب جو یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو تھا بی ایل اے کا ڈرامہ تھا, اور یہ ان کا اپنا خود کا آدمی تھا جو ٹیروریزم جو ہے بلوچستان کے اندر پھیلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان نے جو ہے یونائیٹڈ نیشنز کو بھی انفارم کیا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے, اور یہ افغانستان کی سوئل سے پاکستان کے اوپر کانسٹنٹلی اٹیک کر رہا ہے, تو آپ کو اپنا ایک بڑا رول پلے کرنا پڑے گا ٹو اسٹاپ کراس بارڈر ٹیررسٹ ایکٹس. اس سلسلے میں یہ جو ایشو تھا یہ ریز کیا تھا انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے, اور ان کی میٹنگز بھی ہوئی تھی یو این ڈیلیگیشن جو کہ وچ واز لیڈ بائی یونائیٹڈ نیشن اسپیشل ریپرزینٹیٹو فار افغانستان اندریکا رتوٹے, اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے. تو ان کو انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان کے اندر ٹیررزم افغانستان سے ہو رہی ہے, تو آپ جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں. تو جناب اب کیا ہوئے گا اگر آپ جو ہیں سوتے رہیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ٹیررسٹ کتنے آپ کے ملک میں آ رہے ہیں, کتنے جا رہے ہیں, کدھر کدھر وہ ہیں, اور ان کی کیا کروائیاں ہیں. بہرحال کیا کر سکتے ہیں. آج جناب پاکستان کے بہت سارے ڈفرنٹ جو شہر ہیں ان کے اندر ارتھ کویک کے جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے. ان کے اندر جو ایک لمبی لسٹ ہے, پشاور, سوات, نارتھ وزیرستان, ہنگو, مردان, ملاکنڈ, بنیر, شانگلہ, دیر, مانشہرہ, بٹگرام، ٹورگم، کوہستان، ایپٹاباد، خرم، لاہور، ملتان، چکوال اور سرگودا. پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ارتھ کویک تھا یہ 10:57 پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آیا تھا صبح، اور اس کا میگنیٹیوڈ جو تھا وہ 5.4% تھا رکٹر 5.4 تھا رکٹر اسکیئر پہ. اس کا ایپی سینٹر جو تھا ہندو کچھ ریجن ان افغانستان تھا اور اس کی ڈیپتھ 250 کلومیٹرز تھی. دو مہینے پہلے بھی 4.7 میگنیٹیوڈ کا ارتھ کویک جو آیا تھا اسلام آباد، راولپنڈی اور کے پی میں جون کے مہینے میں، اس نے بھی کافی جو ہے راک کیا تھا سٹیز کو. اس سے پہلے جو ہے سیم منتھ میں ہی ویسے، لیکن تھوڑے دن پہلے 3.2 میگنیٹیوڈ کا ارتھ کویک کراچی میں بھی محسوس کیا گیا تھا. تو یہ کانسٹنٹلی جو ہے چیٹ کے محسوس کیے جا رہے ہیں، تو پائن اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تعلق کوئی دسنا چاہ رہے ہیں کوئی چیز، تو تھی ذرا سمجھ جاؤ. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب، انڈیا کے اندر جو ہیں، اب جو ہماری باجی پہلے بالی ووڈ کی سٹار تھی، اب وہ پولیٹکس میں آ گئی ہے. تو پہلے وہ جو دھماکے بالی ووڈ میں کر رہی تھی، اب وہ کر رہی ہے پولیٹکس میں. بی جے پی کی جو ایم پی ہیں منڈی سے، کنگنا رناوت صاحبہ، انہوں نے آج جو فارمر پنجاب کے ایم پی ہیں سمرنجیت سنگھ من، ان کے اوپر آج بڑے جو ہے کس کے نشانے لیے اپنے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کہا جی کہ یہ کنٹری جو ہے یہ کب ریپ کو معمولی بتانا بند کرے گا، اور یہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں یہ تک ریپ کو ایک بائسیکل رائڈ کی طرح سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو ریپس اور یہ جو ویمن کے اگینسٹ جو وائلنس ہے وہ ہماری سائیکی کے اندر اتنا چل گیا ہے، اور یہ جو پیٹریارکل نیشن ہے یہ ہمیشہ عورتوں کو موک کرتے ہیں اور ٹیز ان کو کرتے ہیں ریپ کا نام لے کے. ایون ہائی پروفائل فلم میکرز اور پولیٹیشنز بھی اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. شرومنی اکالی دل کے جو امرتسر کے پریزیڈنٹ ہیں سمرجیت سنگھ من، 79 ایئرز ان کی ایج ہے، انہوں نے یہ کہا تھا جی جب یہ ریپ کا مسئلہ آیا تھا تو انہوں نے ایک واقعہ اس سے پہلے ہوا تھا جس میں کہ کنگنا رناوت صاحبہ نے بڑے جو جوشیلے انداز میں کہا تھا کہ او جی یہ جو فارمرز کا ایک یہ جو پروٹیسٹ تھا اس کے اندر تو چائنا اور یو ایس کی کانسپریسی تھی، اور یہ جو لوگ یہاں پہ آئے تھے اس میں تو بہت ساری باڈیز کو ہینگ کیا گیا اور بڑی عورتوں کو ریپ کیا گیا تھا، اور یہ تو بڑا خطا. حالانکہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا، فارمرز تو بےچارے اپنی مانگ جو تھے وہ مانگ. اس کے اوپر سمرنجیت سنگھ من جو ہیں وہ بڑا بھڑک گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی کنگنا رناوت صاحبہ سے ذرا پوچھ لو کہ ریپ کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو بیٹر ایکسپلین کر سکیں گی، مے بی ان کے پاس بڑا ایکسپیرئنس ہے. تو اس کے اوپر اب بات. اب اس کے اوپر جو ہے کنگنا رناوت صاحبہ جو ہیں وہ بھڑکی ہوئی ہیں، اور بی جے پی نے لیکن ان کو منع کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ اس طرح کے کوئی بھی سٹیٹمنٹس مت دو، لیکن باجی تو باجی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے باجی تو رکتی نہیں ہے. اور یہ اور جناب، یہ جو کولکتا کے آر جی کر میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کے اندر جو وہ ٹرینی ڈاکٹر تھی جس کو کہ ریپ اور مرڈر کیا گیا تھا، یہ اب بہت بڑا پولیٹیکل مدعا جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اندر پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے بہت زیادہ آتی جا رہی ہے. پیرنٹس جو ہیں بیچاری اس ریپڈ مرڈر ٹرینی جو ڈاکٹر ہے وہ اپنے جسٹس مانگ رہے ہیں، اس کی جو کولیگز ہیں وہ بھی جسٹس مانگ رہے ہیں، اور جو ویمن ان ویسٹ بنگال ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈر ریکلیم نائٹ موومنٹ اس کو جسٹس اور سیفٹی نہ صرف اس لڑکی کو بلکہ تمام عورتیں جو ہیں ان کو ملنا چاہیے. لیکن اب یہ ایک پولیٹیکل سلگ فیسٹ میں ٹرن ہوتا جا رہا ہے، جس میں بی جے پی والے ممتا بینرجی کو، ممتا بینرجی یعنی ہماری دیدی جو ہے ان کو، وہ سارے جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر اعتراض جو ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں. یہ ایک ہوا ایسے ہے، اب ایسے ہوا ہے کہ یہ 997 ورڈ کا ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے پی ٹی آئی، پی ٹی آئی یعنی کہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا والوں نے. انڈیا کی جو پریزیڈنٹ ہیں دروپتی مرمو، انہوں نے کہا جی مجھے اس انسیڈنٹ پہ بڑا افسوس ہے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ عورتوں کے خلاف وائلنس جو ہے ہندوستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. انہوں نے اپنے آرٹیکل میں ڈسکس کیا ہے 2012 کا دلی گینگ ریپ اور بہت سارے مرڈرز جو ہیں وہ اور بھی جس کا ذکر کیا، لیکن جو بی جے پی رول سٹیٹس کے اندر جو مرڈرز یا کرائمز ہوئے، جیسے کہ کتھوا کا واقعہ، اناؤ کا، ہتھرس کا، منی پور کا، بلکیز بانو کا، اس کا انہوں نے اپنے اس آرٹیکل کے اندر بالکل ذکر نہیں کیا. اس کے اوپر تو پھر جی ہماری دیدی جو ہے وہ بھڑک گئی، ٹی ایم سی والے بڑا بھڑک گئے، اور کل تو آپ کو پتا ہی ہے کہ بی جے پی نے 12 گھنٹے کا وہ جو ہے وہ بنگال بند بھی کیا ہوا تھا، بڑے لوکیشنز کے اوپر ان کی پھر لڑائی جھگڑے ہوئے پولیس کے ساتھ. تو چیف منسٹر جو ہے ممتا بینرجی، پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں اور یہ پولیٹیسائز کرنا نہ روکا تو پھر ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم اسٹیٹ مشینری کو यूज करते हुए पुलिस को हुक्म दें कि आपको रोकें। जब इसको रोका गया तो फिर पुलिस के साथ बीजेपी के और टीएमसी के जो वर्कर्स हैं उनके बीच में आपस लड़ाई हुई, मारा कुटाई हुई, काफी लोग जो हैं वो जख्मी हुए। और इसके साथ साथ जो हमारी दीदी है ममता बनर्जी, उसने सारे डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको कहा जी कि आप बड़ा खराब कर रहे हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, आप लोगों की परेशानी में इजाफा कर रहे हैं, वापस जाएं और पेशेंट्स को देखें। और उन्होंने ब्लेम की ऑपोजिशन को कि वो मेरी जो स्टेट है उसके अंदर अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। बीजेपी के जो स्टेट चीफ है सुकांता मजमूदार, उन्होंने कहा जी कि ये जिस तरह की लैंग्वेज बोल रही है दीदी, ये तो उस तरह की है जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन की होती है, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होल्ड करते हैं वो इस तरह की बात नहीं करते हैं, तो शी इज एंटी नेशनल। लो जी, उसको एंटी नेशनल कह दिया जी दीदी को। इसी तरह कांग्रेस के जो लीडर हैं अधीर चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी खोका बाबू, यूपी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ हैं वो ये दोनों तो बात कर रहे हैं एनकाउंटर्स की, इस मुल्क के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है। इसी तरह जो हमारी दीदी है वो बात कर रही है डेथ पेनल्टी को कि लेकिन जिस वक्त वाकयात होते हैं कमदूनी में और हंस खली में और पार्क स्ट्रीट में, उसके ऊपर हमारी दीदी जो है वो बिल्कुल खामोश रहती है। तो ये औरतों के खिलाफ तो एट्रोसिटीज सारे मुल्क में ही होते हैं, तो ये किसी किसी पे बोलती है, किसी किसी पे नहीं बोलती है, तो ये ठीक नहीं है। अब जबकि इसके अपने वेस्ट बंगाल में ये सारा कुछ हुआ है तो ये कवर अप करने की कोशिश कर रही है एविडेंस को और लोगों को इंटिमिडेट कर रही है। लेकिन मैं दीदी को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को इस तरह से सप्रेस नहीं कर सकते हैं। पायन चीजा भैगड़ती जा रही हैं वहां पे, ठीक है जी। और जनाब शबाना आजमी साहबा जो हैं वो अब रीयूनाइट हो सकती हैं दूसरी लेजेंडरी एक्ट्रेस जो हैं जीनत अमान साहबा, उसके साथ बन टिक्की में। और इसके ऊपर आज बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि ये जो है हमेशा से मैंने जीनत अमान को बहुत ही पोलाइट और अच्छा पाया, चार डेकेड्स जो हैं उनसे ये लोग काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब सबसे पहले मैंने इनके साथ काम किया था इश्क 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 में 1974 में ये आई थी, मैं और जरीना वहाब हम बड़े नए थे, लेकिन जो जीनत अमान थी वो टॉप स्टार थी उस वक्त की, लेकिन फिर भी वो कोई ड्रामा श्रामा नहीं करती, मतलब टेंट्रम्स नहीं करती थी और बड़ा इजीली हम उसके साथ जाके मिल सकते थे। और मुझे लगता है कि ये दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल क्वालिटी इन हर, और मैं आज तक उसकी इस चीज की रिस्पेक्ट करती हूं। तो जनाब अब ये नई फिल्म इनकी आएगी बंट की, जिसमें ये दोनों आपको नजर आएंगे। और जनाब खबर आई है कि सलमान खान की मे को रिब इंजरी आ गई है, और अभी एक जो रिसेंट इवेंट हो रहा था जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, जिसमें लोगों ने कहा पेट वेट निकल आया जिसमें वो डांस कर रहे थे, वही इस इवेंट में, तो अब पता आज चला है कि उनका रिब इंजरी था। फिर भी जब उनको कहा गया डांस करने का तो ही रियली शोड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट एंड ही शॉट लेकिन ही डांस। लेकिन अब जो खबर आई है कि ये जो फिल्म सिकंदर है इसकी सारी शूटिंग रुक गई है, क्योंकि इनको डॉक्टर्स ने कहा जब तक आप रिकवर नहीं करोगे आप नहीं। इसके ऊपर फिर आज फैंस का बिल्कुल ही मूड बढ़ गया, जो कल कह रहे थे पेट बढ़ गया ये है वो, उन्होंने कहा जी कि नो नो वी प्रे फॉर योर स्पीडी रिकवरी। इसके साथ साथ सलू भाई जो है और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है जिसमें कि ये नजर आएंगे नाचते हुए, अपनी उसमें गाना भी गाते हुए सुनाई देंगे, वो गाने के बोल भी इन्होंने लिखे हैं और इसको बना रहा है इस गाने को संजीव चतुर्वेदी। लेकिन ये गाना जो है वो अपने छोटे से नन्हे मुन्ने जो नेफ्यू है आयान अग्निहोत्री, जो बेटा है अतुल अग्निहोत्री और इसकी बहन अलवीरा का, उसके साथ ही उसके वीडियो में नजर आएंगे। और उसका टाइटल है सॉन्ग का यू आर माइन, और आयान जो है इस वीडियो के अंदर एज अ रैपर नजर आएंगे अपने मामा जी के साथ। फिल्म मेकर जोया अख्तर जो कि अटेंड कर रही थी एक इवेंट, एक सेशन ऑफ एक्सप्रेसो इन मुंबई, उसमें उनसे पूछा गया कि भई आपका क्या ख्याल है जो ये फिजिकल इंटीमेसी बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जाती है इसको सेंसर किया जाता है। तो वो कहती हैं जी कि ये इंटीमेसी दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम उन टाइम्स में रह रहे हैं जहां पे औरतों को बुली किया जाता है, मारा पीटा जाता है, हरास किया जाता है, सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है और स्क्रीन पे, और सब कोई बड़े मजे लेके उसको देखते हैं, तो एक किस अगर कोई हम दिखा देते हैं तो उससे किसी को मरना नहीं चाहिए हमें, बल्कि जो है ये इस तरह के टेंडर सीन्स दिखाने चाहिए ताकि लोगों के अंदर पता चले कि अगर दो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं और उनके बीच में प्यार मोहब्बत है तो प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देना चाहिए, ये जो सेक्सुअल असॉल्ट्स और हरासमेंट्स और मारपीट जो है इसको इतना बढ़ावा स्क्रीन पे नहीं देना चाहिए। अच्छा जी ठीक है। और जनाब आज आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने हिलाल इम्तियाज जो है जो कि पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो ओलंपियन अरशद नदीम साहब को दिया है। आपको पता ही है 40 साल का जो रिकॉर्ड था पाकिस्तान में ओलंपिक्स, एक भी मेडल नहीं लिया था उसको इन्होंने तोड़ा था, और मेंस जेवलिन थ्रो के अंदर नया रिकॉर्ड भी इन्होंने कायम किया था ओलंपिक्स के अंदर। उस सिलसिले में इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने अगस्त 13 को अनाउंस किया था कि हम इनको हिलाल इम्तियाज देंगे, तो आज इनको दिया गया। और जी बांग्लादेश जो है वो सोचता है कि ये जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज विन है अगेंस्ट पाकिस्तान इन द लॉन्गेस्ट टाइम वो कर सकते हैं, क्योंकि अब जो सेकंड टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होने वाला है उसमें पाकिस्तान के स्टार बॉलर एस एस अफरीदी यानी कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो नहीं नजर आएंगे। और अभी तक जो 14 एनकाउंटर्स इनके हुए हैं बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ उनमें आज भी एक भी सीरीज जो है वो नहीं जीते हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनको देखा गया कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया पहले टेस्ट के अंदर। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं जेसन गिल्स भी, उन्होंने भी आज कहा है कि हमने उनके साथ बातचीत की और उनको बताया कि इस वक्त टाइम यह है कि आप अपने बच्चा जो आपका पैदा हुआ है उसके साथ आप टाइम गुजारें, और वो बात उनको समझ आ गई है और मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं इस चीज के लिए। वो कहते हैं जी हम बेस्ट कॉम्बिनेशन जो गेम का है उसके साथ खेलेंगे, लेकिन उन्होंने एडमिट किया कि चैलेंजेस तो हैं, पता नहीं है कि सीरीज एक एक से स्क्वेयर की जा सकती है कि नहीं, तो जनाब अब देखेंगे। और जनाब टेनिस के अंदर विमेन्स और मेन्स टॉप सीड जो है टेनिस में ईगा स्वेतक और जानिक सिरर वो अब यूएस ओपन के सेकंड राउंड के अंदर जो है वो चले गए हैं। पोलिश स्टार स्वातिक 23 इयर्स उनकी एज है, उन्होंने बीट किया रशियन अपोनेंट कमिला राकिमोवा को न्यूयॉर्क के अंदर ये जो यूएस ओपन हो रहा है उसमें, एंड शी इज नाउ गोइंग टू फेस जापान्स एना शिबाहरा इन नेक्स्ट मैच। और इटली के जो सिनर हैं नंबर वन इन मेन्स सिंगल्स हैं वो भी सेकंड राउंड में पहुंचे हैं, उन्होंने डिफीट किया यूएस प्लेयर मैकेंजी मैकडोनाल्ड को। और यूएस ओपन जो है वो दो वीक्स रहेगा और इसमें जो विमेन्स सिंगल्स होंगी फाइनल वो सितंबर 7 को खेली जाएंगी और मेंस फाइनल जो है वो सितंबर 8 को खेला जाएगा। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट हमारा जो है वो कनाडा पहुंच गया है, हमारे जो फर्स्ट एवर पैरालंपिक गेम्स जो है वो फ्रांस में ओपन हुई है और बड़ी स्टनिंग किस्म की ओपनिंग सेरेमनी थी यहां पे। आउटडोर्स 4,400 एथलीट्स जो हैं पैरालंपिक एथलीट्स वो इसमें कम्पीट कर रहे हैं 22 स्पोर्ट्स एट पैरा स्पोर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 ईयर्स। और ये एथलीट्स जो हैं ये और इनके 168 डेलीगेट्स जो थे ये बड़ा ही आइकॉनिक जो अब मैं लग रहा है ये फ्रेंच नेम्स हैं, सही इनका नाम ले रही हूं, प्लास ला कुना कोडे जो है उसके अंदर से ये गुजर रहे थे एंड शांजलीजे के सामने से ये गुजरे, तो हजारों की तादाद में जो फैंस थे उन्होंने इनको चीयर किया। एथलीट्स ने भी नाचा गाया और वेव किया क्राउड के ऊपर और फिर क्राउड में से बहुत सारे लोगों ने आके इन एथलीट्स के साथ तस्वीरें खिंचाई। और अभी जो हमें खबर आई है लेटली के कनाडा के जो एथलीट्स हैं वो भी उधर पहुंचे हैं और एक जो मेडल है ऑलरेडी कनाडा ने आज जीत लिया है साइकिलिंग में।
क्या बात है जनाब, बिल्कुल गो कनाडा गो,
और कितने गो जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना चक दे फटे, अब भाई वो फटे तो चक लेंगे फिर अब उनको रखना कहाँ है।
अच्छा वैसे
उसी को मैं कह रही हूँ गो कनाडा गो, गो कितने कितने
नहीं बिल्कुल, आपको जो जहाँ गो कहना है ना मैंने
हाँ।
वो कहीं और है।
अच्छा गो कार
वो नहीं 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 गो शाजिया जी गो और तमाम जो हमारे सुनने वाले गो 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 ये जाना है आपने कुडोज स्टोर टेनिस कुडोज स्टोर में। और यहाँ का लाइव ऑन लोकेशन 770 साजो आवाज की टीम वहां पहुंचेगी, तो आपने पहुंचना है टेलिस कूडो के स्टोर में। और एड्रेस क्या जनाब, रिज वे प्लाजा, कौन नहीं जानता इंटरनेशनल प्लाजा रिज वे प्लाजा, तो आपने कल पहुंचना है। कल क्या अभी भी आई थिंक खुला होगा ऑफिस, आप जा सकते हैं, मुझे लगता है 7-8 बजे तक तो चले कल चले जाएं। कल उनका जो है वो
स्पेशल
लोकेशन है और आपको मैंने जैसे कहा था कि 770 का आप उनको रेफरेंस देंगे तो आपको बहुत ही जो शाजिया जी वाले स्पेशल वो पैकेज है वो डील्स हैं वो आपको वहां मिलेगी। और अब जो है आपसे इजाजत लेने का टाइम हो गया जनाब, बिल्कुल आज लियाकत भाई यानी लियाकत मलिक साहब जो हैं वो अपना प्रोग्राम भूली बिसरी यादें लेकर बस कुछ ही देर में आपके साथ शामिल हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे जैसे भी समझ लें, तो मुझे जो है वो इजाजत दे दें और शाजिया जी से भी इजाजत ले लें। शाजिया
जी
आपका बहुत शुक्रिया,
थैंक यू सर,
इंशाल्लाह जिंदगी रही और आपकी सेहत रही,
आप जिंदा रही।
मैंने देखा मैंने थोड़ा चेंज किया।
अच्छा
हाँ मैंने थोड़ा चेंज किया, मैंने कहा
अच्छा।
देखिए मौसम चेंज हो रहा है
ना, अच्छा अच्छा
ठंडी आ रही
है, वक्त भी चेंज हो रहा है,
वक्त भी चेंज हो रहा है,
और दो दिन रह गए हैं 8:15।
अब मैंने ये कहा कि जिंदगी रही
हाँ।
और आपकी सेहत रही,
अच्छा
और बीमार जल्दी हो
और मौसम रहा
आहिस्ता आहिस्ता, अभी मौसम आगे आएगा।
अच्छा मौसम आगे आएगा,
क्योंकि आप किसी दिन सुबह फोन करके मैसेज कर दें कि जी आप बर्फ पड़ रही है, मैं नहीं आ रही हूँ, ये भी आगे आएगा,
आगे आएगा। अच्छा अच्छा
तो बहुत शुक्रिया आपका, माजा
थैंक यू।
तमाम सामीन और नाजरीन को भी जनाब कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना है। और अब जो है वो हम आपको लेके चलेंगे टॉप ऑफ द आवर के ब्रेक की तरफ और फिर भूली बिसरी यादें लेके लियाकत मलिक साहब आपके लिए शामिल होंगे।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा 6472903773 6472903773।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 5196220660 या quicktrucklube.com QTL because we care.
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं